इस महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, संत वाणी में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सूत्र मिला है, बुराई रहित होना स्थूल शरीर को शुद्ध करना है, अचाह होना सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है और अप्रयत्न होना कारण शरीर को शुद्ध करना है। हम लोगों के सामने प्रश्न यह है कि मन को शांति नहीं मिलती और जब समय हम लोग लेते हैं चुप होने के लिए, शांत रहने के लिए, विश्राम पाने के लिए, तो उस समय स्थूल शरीर से काम करना छोड़ देने पर भी सूक्ष्म शरीर में अर्थात मन में इतने प्रकार के चिंतन आते हैं कि शांत रहने का आनंद नहीं आता। यह दशा है और इसका इलाज स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ बैठोगे, कौन वन में कुटिया बनाओगे, कैसे आसन लगाओगे, आंख बंद करोगे कि कान बंद करोगे, तो सब कुछ नहीं। ये सब करने से सूक्ष्म शरीर न शांत होगा न शुद्ध होगा। सही उपाय क्या है कि हमें कर्तव्यनिष्ठ होना है, धर्मात्मा होना है अर्थात बुराई रहित होना है। एक ही बात है, धर्मात्मा होने का अर्थ क्या है कि किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई न करना। अब यहां से साधना आरंभ हो रही है, जीवन में से बुराई का अंत करो, किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई न करो। तो करने का जो हिस्सा है वह स्थूल शरीर के द्वारा संपादित होता है, इसलिए बुराई करना छोड़ दो तो स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा और फिर अचाह हो जाओ, किसी प्रकार की कोई कामना न करो। अप्राप्त की कामना ही चाह कहलाती है। अपने को इस जगत में जो नहीं मिला है उस अप्राप्त की कामना रखना कि अब इतना धन हो जाए, कि इतना सम्मान मिल जाए, कि इतने सुख की सामग्री आ जाए, कि ऐसा पद मिल जाए, कि ऐसा मकान मिल जाए, कि ऐसे सगे संबंधी मिल जाए, इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वे इच्छाएं ही व्यक्ति को चंचल बनाती हैं, उसी से व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। व्यर्थ चिंतन का नाश करना हो तो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि अचाह होने से होती है। चाह छोड़ दो तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, अप्रयत्न हो जाओ तो कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्थूल शरीर की शुद्धि, फिर सूक्ष्म शरीर की शुद्धि और फिर कारण शरीर की शुद्धि, इसी शुद्धि के आधार पर व्यक्ति को विश्राम मिलता है। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। अनेकों पंथ आपने सुना होगा, अनेकों प्रकार की मंडलियां बनी हुई हैं, तरह तरह से विधि विधान से लोग सिखाते रहते हैं। मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने जीवन की वैज्ञानिकता को सामने रखा और यह कहा कि भाई, जब तुम बुराई रहित हो जाओगे तब तुम्हारा स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा और बुराई रहित होने से कर्तव्यनिष्ठ बनोगे। अर्थात जो बुराई रहित भलाई करता है वह धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा की परिभाषा है बुराई रहित होना। कपड़े कैसे पहनते हो, तिलक चंदन लगाते हो कि नहीं, कंठी माला पहनते हो कि नहीं, विशेष प्रकार का रहन सहन आरंभ किया कि नहीं, यह सब तो तुम्हारी मौज की बात है। जी में आए तो करना, नहीं तो मत करना। लेकिन किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई करोगे तो धर्मात्मा नहीं हो सकते। और धर्मात्मा होना अर्थात संसार में रहना सीख जाओ, यह बहुत बड़ी बात है। योगवित होने के लिए, तत्ववित होने के लिए, भगवत भक्त होने के लिए यह पहला कदम है। दूसरी बात है अचाह होकर सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करो। हमारा आपका मन जो है वह सूक्ष्म शरीर का कार्य है। सूक्ष्म शरीर की क्रिया मन की क्रिया कहलाती है। अब मन की शुद्धि चाहिए शांत होने के लिए, साउंड प्रूफ रूम नहीं चाहिए कि जिसमें बाहर से किसी प्रकार की ध्वनि न आवे तो बड़ा घना ध्यान लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बाहर की ध्वनि जो है वह व्यक्ति को उतना ज्यादा परेशान नहीं करती जितना भीतर की कामनाओं के कारण से उठने वाली क्रियाओं से परेशानी होती है। मन के भीतर अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, चहल पहल है, चिंतन है, तो व्यर्थ चिंतन से व्यक्ति को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ बाहर की ध्वनि से और बाहर के दृश्यों से नहीं होती है। अब इस भीतर की तकलीफ को खत्म करना है, इसलिए श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अचाह होकर सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर लो। दो बातें हो गई, स्थूल शरीर की शुद्धि और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। अब आगे बढ़ें, फिर थोड़ी थोड़ी देर का अपने लोगों का जो विश्राम काल चलता है, मानव सेवा संघ की पद्धति का साधन मुख सत्संग चलता है, जिसमें महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। यह अप्रयत्न होना है, अपना कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं चाहिए और वर्तमान क्षण में कुछ करना नहीं है। इस प्रकार अप्रयत्न होने से कारण शरीर की शुद्धि होती है। तीनों शरीरों की शुद्धि का पुरुषार्थ जब आप कर लीजिएगा तब देहातीत जीवन के अधिकारी बनेंगे। समझ में आता है? हम लोगों को शरीर जो मिला हुआ है, एक आकृति लेकर हम लोग बैठे हैं धरती पर, इससे अलग, बिल्कुल अलग हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसमें दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई अभाव नहीं है। अभी उस अस्तित्व का हमें पता नहीं है, वह देहातीत जीवन कहलाता है। वस्तुतः जीवन वही है, शरीरों के साथ मिलकर हम रह रहे हैं, तो भूख प्यास शीत और गर्मी
और अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट और अनेक प्रकार की शारीरिक उत्तेजनाएं सबका असर अपने पर हो रहा है। और जो लोग देहातीत जीवन में रहना सीख जाते हैं उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ कष्ट नहीं होता है। उस देहातीत जीवन तक पहुंचने के लिए तीनों शरीरों की शुद्धि की चर्चा आई। अब उसका परिणाम देखिए, उसमें भी बड़ा भारी वैज्ञानिक सत्य है। और वह क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने खाने पहनने का, खेलने कूदने का सुख लेना चाहते हैं, तो जिसको बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने का शौक है और स्वादिष्ट वस्तुओं को खाने का सुख लेना है, जिसको शरीर के माध्यम से सुख लेने की इच्छा है, वह शरीरों का सहारा छोड़ नहीं सकता। ठीक है जी। जैसे आँखों से बहुत ही सुंदर मोहक रूप देखने का शौक है, तो जिसको आँखों से देखने का शौक है वह आँखों का सहारा छोड़ नहीं सकता है। ठीक है न? तो जब तक आँखें रहेंगी तब तक देखने का सुख लेगा, और आँखें नहीं रहेंगी तो रोएगा, झक मारेगा, हाय अब क्या करें। तो दिखने वाला और मिटने वाला, बनने वाला और बिगड़ने वाला शरीर जो है, उससे अगर अपने सुख के लिए कुछ करना है तो सुख के भोगी में शरीरों से ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं आती है। वह मान भी नहीं सकता है कि शरीरों के अलावा और भी कोई जीवन होता है, कि और भी कोई अस्तित्व होता है। इस बात को सुख का भोगी मान भी नहीं सकता है। तो समझेगा कहाँ से और अनुभव कहाँ से करेगा। वह तो शरीर को ही सब कुछ मानता है, लेकिन जिन साधकों को विश्राम का चाव है और योगवित होकर के उसमें कैसा एक नित्यानंद का अनुभव होता है, योगवित होने में अर्थात शरीरों का सहारा छोड़कर अपने जीवन का जो उद्गम है उससे मिल जाने में कैसा आनंदमय जीवन होता है, इस बात का शौक जिनको होता है, वे शरीरों के सहारे मिलने वाले जगत के सुखों का त्याग कर देते हैं। जिनको नित्य योग का शौक है वे शरीरों के सहारे भोग में लगे हुए नहीं रहते। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि पहले इसी को शुद्ध कर लो, शुद्ध कर लोगे तो उसका सहारा छोड़ सकोगे, और ये शुद्ध बने रहेंगे तो इनमें उलझे हुए रहोगे, और ये अशुद्ध बने रहेंगे तो इनमें उलझे रहोगे, शरीर का सहारा छोड़ नहीं सकोगे। पहली बात हो गई। योगवित होने के लिए, तत्ववित होने के लिए, भगवत भक्त होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले बुराई रहित हो जाए। दूसरी बात, वे कहते हैं कि जो धर्मात्मा हो जाते हैं अर्थात शरीर से स्वयं अपना कोई सुख नहीं लेते, दुखी जनों की सेवा में शरीर को लगाते हैं, उनको अपने लिए शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, स्थूल शरीर की आवश्यकता खत्म हो गई, बुराई रहित हो गए तो स्थूल शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो गई। और सोचो कामनाओं की उत्पत्ति का हमको कब पता चलता है, जब मन में उनका चित्र दिखाई देता है। अब मुझे वहां जाना है, एक बहुत सुंदर देखने में बड़ा ही अच्छा, अच्छे जलवायु का बड़ा ही स्वास्थ्य प्रद स्थान है, वहां हम जाएंगे। लो अब एक कामना उत्पन्न हो गई, बैठे हैं यहाँ और इच्छा उत्पन्न हो गई कि वहां जाएंगे, तो यह एक कामना है। अब इस कामना की उत्पत्ति से व्यक्ति गतिशील हो जाता है। अब कैसे बैठा रह सकता है? शांति उसकी खत्म हो गई, अब वह दौड़ धूप शुरू करेगा। प्रोग्राम बनाना है, किससे कहें, कैसे जाएं, इंतजाम करना है, वहाँ रहने का कैसे होगा, बहुत सी बातें उसके मन में एक साथ उत्पन्न हो गईं और उसी में उसका मन चिंतन में लग गया। कामना की उत्पत्ति मात्र से मन में चिंतन आरंभ हो गया और अगर किसी प्रकार वहां पर पहुंच सके तो पहुंचने का सुख जो है वह सुख भी व्यक्ति को कब सुखद लगता है? जबकि उसके भीतर में कामना थी वहां पहुंचने की, तो बड़ा सुख मालूम हुआ। और आप यदि अपना संकल्प नहीं रखते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं है और मित्रों के संकल्प से, उनके कहने से, उनके प्रयास से आप वहां पहुंच भी गए, तो रमणीय स्थान को देखने की कामना आपके भीतर नहीं थी, भीतर की शांति आपको पसंद थी, इसलिए उस स्थान पर पहुंचकर भी आपको कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मालूम होगा। सोचिए, यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं, वहां चले गए तो चले गए, कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही आप अगर सोच करके देखिए कि कामना की उत्पत्ति से ही व्यक्ति के भीतर चिंतन आरंभ होता है और जो सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ देगा उसके मन में किसी प्रकार का चिंतन आरंभ नहीं होगा। और चिंतन आरंभ नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा। अपने को कामना रहित बना लिया तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो गई। अपने लिए सुख लेना छोड़ दिया तो स्थूल शरीर की जरूरत ही खत्म हो गई। अपने जीवन में से कामनाओं का अंत कर दिया तो सूक्ष्म शरीर की जरूरत पूरी हो गई। और अपने द्वारा अप्रयत्न हो गए तो कारण शरीर की जरूरत खत्म हो गई। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शरीरों के रहते रहते शरीरों की आवश्यकता खत्म हो जाती है वो योगवित होने का अधिकारी होता है। यह श्री स्वामी जी महाराज का अनुभूत सत्य है और हम लोगों को वे ऐसा परामर्श दे रहे हैं। अब इसकी प्रक्रिया देखिए, जिसकी सभी लोग चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई इंद्रियों को विषय विमुख कर लो। यह भाषा आप लोगों ने सुनी होगी, प्रक्रिया की भाषा है। इंद्रियों को विषय विमुख कर लो, मन को निर्विकल्प कर लो और बुद्धि को सम कर लो। इंद्रियों को विषय विमुख करने की सामर्थ्य किसमें आएगी? जो इंद्रिय लोलुप होगा उसमें आएगी कि जो संयमी होगा उसमें आएगी? संयमी में आएगी। जब तक इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग अपने को अच्छा लगता है तब तक इंद्रियों की शक्ति को मन में विलीन करना संभव नहीं, क्योंकि ये तो बाहर ही बाहर रहेंगी, भीतर से उद्रेक होता रहता है। और अब सामने का दृश्य देखेंगे, अब मधुर मधुर ध्वनि सुनेंगे, अब सुस्वाद वस्तु खाएंगे, अब खेलेंगे, अब मन बहलाएंगे, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे। इतनी इच्छाओं को लेकर के और इंद्रियों द्वारा विषयों का सुख लेने की कामना जिसके भीतर है, वह इंद्रियों को विषय में मुख नहीं कर सकता है। इंद्रियां यदि विषय विमुख नहीं हुई तो मन शांत हो ही नहीं सकता। मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि भाई इंद्रियों की शक्ति को मन में विलीन कर दो। कर दो क्या, वो होता है अपने आप से। जो लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों का सुख पसंद नहीं करते हैं, उनकी इंद्रियों की शक्तियाँ स्वतः ही मन में जा करके विलीन होती हैं। इंद्रियों की शक्ति मन में विलीन हो जाए और मन के लिए कोई काम रहा नहीं, क्योंकि अपना कोई संकल्प ही नहीं है, अपनी कोई कामना ही नहीं है, तो मन के लिए जब कोई काम रहा नहीं तो आदमी को मन का पता भी नहीं चलता है कि मेरे पास मन है। यह जीवन का वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन देखिए, साधक लोग तो परेशान रहते हैं, जिससे सुनो वही शिकायत करता रहेगा, अरे मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, संभाल में नहीं आता है, दमन नहीं कर पाते हैं, उसकी चंचलता रुकती नहीं है। मन के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे कि मन कोई बड़ा भारी दुश्मन हो। इस तरह से लोग मन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। साधक की अपनी भूल है, और अपनी भूल यही है कि विविध प्रकार की कामनाओं को रखना पसंद करो और कामना पूर्ति के सुख को पसंद करो और कामना पूर्ति के प्रयास में लगे रहना पसंद करो और चंचलता मिटाना चाहो तो नहीं मिटती है। मिटेगी कैसे? नहीं मिटती। इसीलिए संत की सलाह है कि भाई बुराई रहित हो जाओ तो स्थूल शरीर की जरूरत नहीं रहेगी, यह शुद्ध हो जाएगा। इंद्रियों को विषय विमुख कर लोगे तो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहेगी, और जब बाहर हमको कुछ देखना ही नहीं है तो कैसा भी दृश्य क्यों न सामने आया हो, जब उसको देखने का सुख ही नहीं भोगना है तो आंखें खोलने की आवश्यकता है जी? नहीं। तो आंखों की शक्ति देखने में जो खर्च हो रही है वो मन में जाकर शांत होगी कि नहीं हो जाएगी? जिसको दृश्य जगत की आवश्यकता नहीं है उसकी इंद्रियों की शक्ति मन में जा करके विलीन हो जाती है, ठीक है ना? सोचिए, देखना ही नहीं है अपने को तो आंख के द्वारा जीवनी शक्ति जो बाह्य जगत के दृश्यों पर जाकर लग रही है, टकरा रही है, खर्च हो रही है, नष्ट हो रही है, तो जब हम देखेंगे ही नहीं, जब हम सुनेंगे ही नहीं, जब हम चखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो इंद्रियों की शक्तियाँ जो बाह्य जगत पर जाकर खर्च हो रही हैं, वो बच जाएंगी। उसमें जो गति है वह है चाहे बाहर में प्रवाहित हो और चाहे भीतर, आप जब उस शक्ति को बाहर प्रवाहित करने से रोक देंगे, बाहर के दरवाजे बंद कर देंगे, तो वह स्वतः ही भीतर प्रवाहित हो जाएगी। इंद्रियों की शक्ति जब हम बाहर में खर्च करना बंद कर देते हैं तो वे कहाँ जाएंगी? मन में जाकर विलीन हो जाएंगी। बहुत विश्राम मिलता है। सर्वेंद्रियों की शक्तियाँ, सब ज्ञानेंद्रियां, सब कर्मेंद्रियां, सबकी शक्तियां अंतर की ओर जहां से निकल करके आई थी उधर की ओर प्रवाहित हो जाती हैं, उद्गम में जा करके लय हो जाती हैं, तो बड़ा विश्राम मिलता है। यह योग का पहला कदम है, आरंभ हो गया। वृत्ति बहिर्मुखी नहीं रह करके अंतर्मुखी हो गई, यह एक बहुत बड़ा काम हो गया। फिर उसके बाद अगर आप कामना रहित हो गए हैं सब प्रकार की कामनाओं का त्याग आपने कर दिया है, अचाह हो गए हैं, तो मन की गतिशीलता भी खत्म है, उसकी जरूरत अब आपको नहीं है। तो मन की मन भी अब क्रियाशील नहीं रहेगा। इंद्रियों की शक्तियां जाकर मन में डूब जाती हैं, फिर मन की शक्ति जाकर के बुद्धि में विलीन हो जाती है, और बुद्धि के लिए भी कोई काम बाकी नहीं रहा। आदमी जहाँ बैठा है, अब यहाँ से उठकर कहीं जाने की कामना पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, तो वह इच्छा पूरी कैसे होगी, इस पर बुद्धि विवेचन करती है, यह इंतजाम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और जब अपनी ओर से कोई कामना ही शेष नहीं रही, तो बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसका काम खत्म हो गया, बुद्धि सम हो जाती है, शांत हो जाती है, इसी को समाधि कहते हैं। तीनों शरीरों से हर प्रकार से अपने को अलग कर लेना, यह बहुत ही आवश्यक है देहातीत जीवन के आनंद के लिए। इसका उपाय बता दिया महाराज जी ने, बुराई रहित भलाई करो तो स्थूल शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, और अचाह हो जाओ तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, सहारा छूट जाएगा, और अप्रयत्न हो जाओ तो कारण शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। शरीर रहेंगे परंतु साधक को अपने लिए उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। परम विश्राम के लिए बहुत आवश्यक बात है। अप्रयत्न होने का अर्थ है मनुष्य के जीवन में अशुभ कर्म का तो कोई स्थान ही नहीं है, शुभ कर्म की भी जब तक उत्पत्ति हो रही है तब तक कारण शरीर का सहारा चाहिए। स्फूर्ति हो रही है भीतर से शुभ कर्म के लिए, तो कारण शरीर से आरंभ होता है, फिर सूक्ष्म शरीर पर आता है, कामनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, संकल्पों के रूप में, और फिर ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के स्तर पर आता है क्रिया के रूप में। तो जैसे जैसे हम अपनी ओर से अप्रयत्न होते जाते हैं, फिर शरीरों की आवश्यकता नहीं रहती है। तीनों शरीरों का साथ छूट गया, अब अपने को चाहिए नहीं, ऐसे साधक को पूर्ण विश्राम मिलता है। बुराई रहित होना पहला कदम, अचाह होना दूसरा कदम, अप्रयत्न होना तीसरी बात। अब ये तीनों जहाँ पूरे हो जाते हैं, वहाँ व्यक्ति योगवित हो जाता है। वृत्तियों को बलपूर्वक रोकने के अभ्यास में, और वृत्तियाँ स्वयं ही जाकर के अपने उद्गम में विलीन हो जाएं, इस स्वाभाविकता में बहुत बड़ा अंतर है। जो कारण शरीर की स्थिति की शांति में पहुंच गया, जिसके पास मन है कि इंद्रियां हैं, इसका कोई भास नहीं है, तादात्म काल में व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता। पता नहीं अब आप लोगों ने शांत रहने का स्वभाव बनाया हो, विश्राम संपादित करने का, तो आपको पता होगा कि कितनी जल्दी इस स्थूल शरीर का भास छूटता है। पड़ा है जहाँ का तहाँ, लेकिन अपने को फील नहीं होता कि यह शरीर यहाँ पड़ा है, रख दिया गया है इसको आराम से, जैसे कि एक यह वस्तु अलग रखी है। इस रखी हुई वस्तु का भार अपने पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही शांत होते ही इस शरीर के रखे रहने का भार अपने पर नहीं होता है। तो स्थूल शरीर का भार खत्म हो गया, और मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं रहा, कोई कामना ही नहीं रही, तो आदमी को यह भी पता नहीं चलता कि मेरे पास मन है, मन का भार भी अपने पर नहीं रहा। और नहीं तो सोचकर देखो कैसी दुर्दशा है, किसी काम को करना है आपको और उसमें मन नहीं लगता है, और जबरदस्ती आप करना चाहते हैं तो मन का बड़ा भार मालूम होता है। आपने कभी अनुभव किया है? जी होता है। अब क्या करें, मन लगता ही नहीं, लेकिन काम तो करना ही है। मन लगे नहीं और जबरदस्ती उस काम को करना चाहो तो बड़ा भार मालूम होता है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि मन में किसी प्रकार का चिंतन न हो, शांति काल में जिस समय आप योगवित होना चाहते हैं, विश्राम के संपादन में हैं, तो आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का चिंतन न हो, और जब भीतर से एकदम चिंतन का तूफान उठता है, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, एक पर एक भूत भविष्य के चिंतन से मस्तिष्क जब भरता है, तो चिंतन वाले मन का भार अपने को ढोना पड़ता है, बड़ा कठिन मालूम होता है। ऐसा लगता है कि मन नहीं होता तो अच्छा था। जिन लोगों में विश्राम संपादन की बात सिद्ध हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पास शरीर है कि नहीं, कि मेरे पास मन है कि नहीं। तन और मन के आभास से वे छूट जाते हैं। कितनी बार ऐसा भी अनुभव हुआ है कि शरीर को यूं पकड़ के जैसे बैठ गए हैं और एक पर एक हाथ रखा हुआ है, तो चमड़े से चमड़े का स्पर्श हो रहा है, एक स्पर्श संवेदना हो रही है अपने को। जिस समय आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्तियां मन में जाकर विलीन होती हैं और मन की शक्ति जाकर बुद्धि में विलीन होती है, तो ऐसे पड़े रहने पर भी स्पर्श संवेदना का भान अपने को नहीं होता है। रखा है बस ठीक है, कोई भार नहीं है और कोई संवेदना नहीं है, सब भार खत्म हो जाता है। तब क्या रह जाता है? एक परम शांतिमय अस्तित्व रह जाता है, जिसमें न तन का भार है न मन का भार है। तन से छूट गए तो स्थूल शरीर से छूट गए, और मन से छूट गए तो सूक्ष्म शरीर से मुक्ति मिल गई। अब रह गया केवल कारण शरीर की स्थिति की शांति, वहां एकदम शांति रहती है, और वह शांति ही अपना अस्तित्व मालूम होती है, और उसी को भौतिक विकास की चरम सीमा बताया गया। यह समाधि जो है, बुद्धि का सम हो जाना, इसको श्री महाराज जी ने भौतिक विकास की चरम सीमा बताया, क्योंकि अभी कारण शरीर वहां बना हुआ है। जो साधक कारण शरीर की शांति की गाढ़ता में अलौकिक शक्ति की वृद्धि कर लेते हैं, उनका उस शरीर से भी तादात छूट जाता है, और तब वे नित्य योग का आनंद लेते हैं। जब सब प्रकार के शरीरों से संबंध छूट गया, तो उस नित्य योग में तत्व बोध होता है, और फिर तत्व बोध में परम प्रेम होता है। योग बोध प्रेम मानव के विकास की सबसे ऊंची बात है। यह जब पूरा हो जाता है तो सब प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, अभाव मिट जाता है, रसमय आनंद से जीवन भर जाता है। मैंने भगवत भक्त संतों को देखा है जिनकी इंद्रियां विषय विमुख हो गई हैं, प्रेम के प्रभाव में जिनका मन बिल्कुल डूब गया है परमात्मा से मिलकर। यह भी एक बड़ा रहस्य मुझको मालूम होता है कि तन की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जो हम लोगों के व्यक्तित्व में काम करती हैं, ये सब शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, समष्टि शक्ति से निकली हैं, यूनिवर्सल एनर्जी जिसमें से निकल निकल करके छोटे छोटे रूपों में ये शक्तियाँ हमारे व्यक्तित्व में काम कर रही हैं। समस्ति शक्ति का भी स्रोत कहाँ है? अनंत शक्तिमान परमात्मा है। अनंत शक्तिमान परमात्मा में से शक्तियाँ निकलकर हम सब लोगों के व्यक्तित्व में छोटे छोटे रूपों में काम कर रहे हैं। इनको जब हम लोग बाहर की ओर से भीतर की ओर मोड़ देते हैं तो जैसे जल की धारा बह रही है और सामने से उसको रोक दीजिए तो किधर जाएगी? पीछे की ओर बह जाएगी। अगर आगे से उसको जाने का रास्ता नहीं देंगे और वहाँ जल बढ़ जाएगा तो धारा जिधर से आई है उधर ही लौट जाएगी। ऐसे ही होता है, बाहर की ओर से उसको बहने नहीं दो तो पीछे की तरफ लौट जाती है। पीछे की तरफ जाकर जब वह उसमें मिल जाती है जिसमें से निकली थी तो यह नित्य योग कहलाता है। उसके लिए यह पूरा इंतजाम हम लोगों को करना है, ऐसा समझ महाराज जी का परामर्श है। अगर इतना हो गया तो आप मृत्युंजय हो गए। तब शरीर के नाश की घड़ी आएगी तो कैसा लगेगा? जैसे कि एक मशीन अभी बोल रही थी, काम कर रही थी और अब बंद हो गई, ऐसा ही लगेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत और बिल्कुल आनंद में अलग से देखते रहेंगे कि शरीर रूपी यह मशीन अभी बोल रही थी, इसमें से कंठ ध्वनि निकल रही थी, अभी कुछ हो गया, यह टूट गई मशीन, बंद हो गई। अपने पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता यदि आपने देहातीत जीवन के विश्राम में रहना सीख लिया है तो। कुछ नहीं, बिल्कुल ही उसका कोई असर अपने पर हो नहीं सकता। यह है योगवित होने का अर्थ और इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जो जीवन होता है शरीरों से अतीत का, वह अविनाशी भी होता है, आनंदमय भी होता है और प्रेममय भी होता है। कहाँ से आरंभ करेंगे हम लोग? कैसे करके हम इस जीवन में विश्राम का संपादन करेंगे? यह सब साधकों की अपनी अपनी तैयारी की बात होती है। जो लोग स्थूल शरीर में ही फंसे हुए हैं तो उनके लिए बुराई रहित भलाई करना अनिवार्य है, बहुत परिश्रम पूर्वक खूब काम करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आपने काम को कैसे जीता, तो उन्होंने कहा काम करके। भीतर की जो वासना है उस पर कैसे विजय प्राप्त किया आपने? तो महर्षि ने उत्तर दिया कि परिश्रम के द्वारा। जो साधक अभी स्थूल शरीर के स्तर पर विकारों में ही फंसे हुए हैं उनको चाहिए कि खूब परिश्रम पूर्वक सेवा कार्य करें, फिर उससे ऊपर उठें। तब क्या करें? 24 घंटे में से कुछ घंटे शरीर से खूब काम कर लें, तो काम करने के बाद
उसके आगे के जीवन में शांति पूर्वक रहें, परिश्रम पूर्वक शुद्ध भाव से सर्वहितकारी काम करना और काम करने के बाद शरीर और संसार से असंग होकर शांत रहना, ये क्रम बनाया जाए प्रतिदिन का तो अच्छा रहेगा। विकारों पर विजय प्राप्त किया जा सकेगा, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध किया जा सकेगा, अचाह हो करके कारण शरीर से छुट्टी ली जा सकती है, अप्रयत्न हो करके तो धर्मात्मा होना, अचाह होना और अप्रयत्न होना, ये मौलिक बातें हैं कि जिनसे योगवित, तत्ववित और भगवत भक्त होना संभव होता है। दो ही चार वाक्य इनके इतने गहन गंभीर निकले कि इस पर विचार करते रहो, इस पर चलने की कोशिश करते रहो तो अपने आप ही भीतर से इतना विकास हो जाएगा कि फिर किसी से कुछ पूछना शेष नहीं रहेगा। कभी कभी साधक ऐसा अनुभव करते हैं कि जब बुराई रहित होने के लिए कोई नियम ले लेते हैं, जैसे हमें यह नहीं करना है, तो उसमें ही मन ज्यादा जाता है और जब तक उसको कर नहीं लेते हैं तब तक उससे छूट नहीं पाते हैं। यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है साधन काल में। बात ऐसी है कि साधक उस बुराई में से अपनी निष्ठा को हटाया नहीं। देखिए, बुराई करने वाले को बुराई करने में केवल दुख मिलता हो ऐसा नहीं होता है। इंद्रियों को बिल्कुल असंयमित छोड़ देना एक बुराई है। असंयमित छोड़ देने में केवल दुख मिलता हो ऐसा नहीं होता। तत्काल पहले थोड़ा सुख होता है, बाद में दुख होता है। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने सोचा था कि यह बुराई नहीं करेंगे और किए बिना नहीं रहा जाता है और अपने को रोकना चाहते हैं तो भीतर से और अधिक वेग पैदा होता है, तो इसका मतलब यह है कि उस सुख के प्रलोभन का त्याग आपने नहीं किया, केवल उस सुख की क्रिया को रोकना पसंद किया। क्रिया के पीछे सुख का प्रलोभन है ना? प्रलोभन अगर जीवन में रहेगा तो क्रिया कैसे रुकेगी? जितना रोकोगे उतना ही भीतर से वेग बढ़ेगा। इसलिए प्रलोभन को छोड़ो। जहां जहां व्यक्ति को ऐसी असमर्थता लगे कि अमुक बुराई को छोड़ने में मैं हार रहा हूं और ऐसा पता चले तो सर्व सामर्थ्यवान से शक्ति मांगनी चाहिए। बुराई को मैं बुराई करके जानता हूं और अपने द्वारा उसको छोड़ने में मैं हार रहा हूं, तो हे समर्थ आप मेरी रक्षा करें। अगर समर्थ स्वामी से शक्ति मांगोगे, आवश्यकता अनुभव करोगे, तो उनके बल से तुम्हारी बुराई खत्म हो जाएगी। अपने भीतर वृत्ति को शांत रखने में और अंतर्मुख होकर के अपने उद्गम से मिलने में अलौकिक आनंद है। जीवनी शक्ति को बाहर की ओर प्रवाहित करने में योगविद संतों को बड़ा भार लगता है, एकदम पसंद नहीं आता है। ऐसा ही कभी अवसर आ गया तब वे किसी तरह बहिर्मुख होते हैं। ऐसा है वह अलौकिक आनंद। और मुझे इतना स्वाभाविक लगता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, उद्गम से बिछुड़ जाने के कारण ही जीवन में इतनी नीरसता भर गई कि हम लोग बाहर बाहर जगह जगह रस खोजते फिर रहे हैं और नहीं तो बाहर से अंदर जाने की प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो फिर तो आप उस उद्गम से मिले बिना, उस नित्य योग से संपन्न हुए बिना रास्ते में रुके नहीं सकते। ऐसा आनंदमय है वह जीवन।